अभी जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो जो इल्मे तफसीली होता है उसकी खसूसियत यह है कि वो होता ही तबलीग के लिए, तो इंसानों के लिए है ना वो। इल्मे इजमाली जो आलिम के कोर्स के अलावा आप किसी आलिम के पास गए, अपनी नमाज का मसला पूछ लिया, अपने रोज़े का मसला पूछ लिया, अपनी ज़कात का मसला पूछ लिया, वो अपने लिए है। लेकिन ये पूरी किताब पढ़ रहे हैं आप, किताबुत तहारत से लेकर आखिर तक, ये काय के लिए? तो ये उम्मत इंसानों के लिए, उम्मत के लिए है। इल्म आलिम जो होता है तफसीली वो उम्मत के लिए ही होता है। ज़ाहिर है कि उम्मत के लिए तालीम के लिए भी होता है, उसूलन तो तालीम के लिए ही होता है, लेकिन तालीम उम्मत को उस वक़्त तक नहीं दे सकते जब तक उसको तबलीग ना करें, क्योंकि तबलीग नहीं होगी तो उसमें तलब ही नहीं होगी। तबलीग से तलब आती है, तलब से तालिब इल्म बनता है, ताल्लुम आता है, उसमें सीखने का जज्बा आता है। तो तरतीब इसकी इस तरीके के है। इस वजह से जिन लोगों में तबलीग करना है उन लोगों से मुनासिबत होना, जिन लोगों में हमको तालीम करना है तबलीग करके उनसे मुनासिबत पैदा करना है, कौन हैं, कैसे लोग हैं, उनका लेवल क्या है, ईमान का लेवल क्या है, दीन की कबूलियत का लेवल क्या है, इस्तेदाद कैसी है उनके अंदर, क्या हालात चल रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के पूरी दुनिया में इस वक्त, वो किस तरह की बात को वो लेते हैं, किस तरह की बात को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, एक तो ये भी चाहिए। उलमा को जो जमात में निकालने को कहा जाता है, निकलने को कहा जाता है, उसका एक उसकी एक वजह यह भी है, उसका एक सबब यह भी है कि अगर नहीं जाएंगे ये आवाम में तो आवाम की ज़हनियत का ना अंदाज़ा हो सकेगा ना उनसे मुनासिबत हो सकेगी। प्लस वो जो आपने दावत में जाके कहा होगा, सुना होगा, सीखा होगा, वो ये होता है कि बेतलबों तक खुद ही जाना पड़ेगा, चाहे बड़े आलिम साहब हों, शेख उल हदीस हों, शेख उल तफसीर हों। जब पैगंबर खुद गए तो दूसरे का तो कोई हिसाब ही नहीं रहता। तो दावत में जो होता है वो बेतलब तक खुद जाना, दाई का खुद मदरू तक पहुंचना। और दाई जो है वो जब तक खुद से नहीं जाएगा तो दावत की जो हकीकत है पूरी वो मुतहक्क नहीं होगी। मैसेज जो है वो बहुत सी चीज़ों को कवर नहीं करता। आपने भेज दिया दीन की कोई बात, भेज दी इंसानों तक, वो बहुत सी चीज़ों को कवर नहीं करती है जो दावत में चाहिए। दावत में तवज्जो चाहिए, मैसेज में कहाँ तवज्जो होती है? शफ़क़त चाहिए, कहाँ शफ़क़त का इजहार हो सकता है? दुआ चाहिए उसके लिए, उसमें कहाँ दुआ होती है? हिकमत चाहिए कि सामने वाला जाहिल है, आलिम है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, बेपढ़ा लिखा है, देहाती है, ये कैसी बात को ले सकता है? वो आप मैसेज के अंदर नहीं आ सकती वो बात। एक से ज़्यादा मर्तबा चाहिए, वो भी नहीं आ सकती। मुख्तलिफ़ उसलूब बदल के चाहिए, ऐसा नहीं समझ में आया शायद ऐसा समझे, ऐसा नहीं समझ में आया शायद ऐसा समझे, इससे तासुर ले लिया शायद इससे तासुर ले। तो ये दाई से ही हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। जब तक दाई खुद मदरू तक नहीं जाएगा तो दावत के अंदर जो और चीज़ें चाहिए मैसेज के अलावा वो नहीं पूरी हो सकती। इसीलिए इंसान का इंसान तक जाना है, और जिस लेवल का इंसान जाएगा उस लेवल का फ़ायदा होगा। आलिम जाएगा तो इल्म के एतबार से फ़ायदा होगा, और उसकी खूबियों के एतबार से सालेह होगा, मुत्तकी परहेजगार होगा, बहुत बड़ा साहिब फहम व बसीरत होगा, साहिब मारिफत होगा, उसके एतबार से उसके असरात होते हैं। इसलिए ज़माने तालिबे इल्मी से ही जमात में थोड़ा बहुत जाते रहने का मिजाज रखने को कहा जाता है। बहुत अच्छा किया जो आप लोग तशरीफ़ ले गए, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और यहाँ आने के बाद में भी इससे टच में रहना, लगे में रहना इज्तिमात में, सिरोजा की जो जमात उसमें सिरोजा की जमातों में جماعتیں اپنے پاس آتی ہیں ان کو وقت دینے میں، توجہ دینے میں، اکرام کرنے میں، خدمت کرنے میں، ان کی تعلیم میں بیٹھ گئے، ان کے ساتھ مذاکرہ کر لیا تھوڑا سا، یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. مدرسوں کے اندر تو چونکہ طالب علم آتے ہیں اور طالب علم ہماری شرائط پر آتے ہیں، تو ہم ان کو ہر طرح کا اصول ضابطہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ رولز ہیں، یہ ریگولیشنز ہیں، آپ کو یہ کرنا ہوگا، ایسے کرنا ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے یا رہنے کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کو اوبے کرنا ہوگا، سموتاعت چاہیے، آپ کو ادب کرنا ہوگا، بے ادبی کریں گے، بدتمیزی کریں گے تو نکال دیں گے، یہ سب چیزیں مدرسے میں چلتی ہیں، دعوت میں نہیں ہوتی ہے سب چیزیں. اس لیے داعی کو مدعو سے نہ ادب کا تقاضا کر سکتا ہوں، مطالبہ کر سکتا، نہ سموتات کا کر سکتا، کسی چیز کا نہیں کر سکتا. تو داعی کو اتر جانا پڑتا ہے، چھوٹا بن جانا پڑتا ہے. آپ بہت بڑے آدمی کی اولاد ہوں گے، آپ بڑے آدمی ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، آپ بہت قابل ہوں گے، آپ کچھ بھی ہوں گے، اس کو نہیں پتا ان سب چیزوں کو. اسے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انسانوں میں، تو جن کو دعوت آپ دے رہے تھے وہ لوگ آپ کے ساتھ ہر قسم کی بدتمیزی کرتے تھے، آپ پر تھوکتے تھے، آپ کو مارتے تھے، آپ پر کنکر اٹھاتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، آپ کو جناب ٹیز کرتے تھے، ستاتے تھے، سب کیا آپ کے ساتھ، جانی نقصان بھی پہنچایا، عزت والا نقصان بھی پہنچایا، مالی نقصان بھی پہنچایا، جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. راستے میں کچرا ڈالا، راستے کے اندر غلاظت ڈالی، راستے میں کانٹے بچھائے، نوجوان لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، سب ہوا. حالانکہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں ہم، اولو العزم، اور تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اور اللہ پاک نے بھی کچھ نہیں کہا. جب بہت حد سے زیادہ نوبت بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتے بھیجے طائف کے پہاڑوں کے، کہ بھائی اگر آپ کہو تو انتظام کریں ان کا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیا، نہ کریں تو بھی چھوڑ دیا. مگر وہ طائف کے علاوہ کی پوری زندگی بھی تو جد و جہد سے بھری ہوئی ہے نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں فرما رہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو تو نہیں پتا نا یہ کس مقام کے آدمی ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کسی قسم کا. لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے، وہاں جب لوگ آپ کو پہچان گئے، آپ پر ایمان لے آئے، تو پھر ان سے مطالبہ تھا کہ بیعت بھی نہیں کر سکتے آپ، زور سے آواز نہیں کر سکتے آپ، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لا تقدموا بین ایدی اللہ و رسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے آپ، کمرے پہ جا کے آپ بلا نہیں سکتے یا محمد اخرج الینا، نہیں کہہ سکتے اے محمد تشریف لائیے، بات کرنا ہے کچھ، باہر بیٹھو. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ، صبر کرو، جب خود ہی نکلیں گے تب بات کرنا، آپ کو بلانا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں مکے میں تو نہیں تھی. جب آپ غیر مسلموں میں، غیر بے طلبوں میں گئے تھے، وہاں تو نہیں تھی یہ سب باتیں. حالانکہ وہی مرتبہ ہے حضور کا، وہی شان ہے حضور کی. تو جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو دعوت کے کام کے ساتھ میں اپریشیٹنگ نہیں ہے. السلام علیکم حضرت، خیریت؟ معلوم ہوا کہ جمعہ پڑھانے وہاں تشریف لے گئے تھے. ماشاء اللہ، جی احمد صاحب کو بتا دیا تھا کہ وہ دال کا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، ابھی نکلنا ہے، تو میں جمعہ کو بات ہو جائے، بیٹھ جاؤں گا 10-15 منٹ. ہاں، جب سے بات چلی رہی ہے. تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا، بتا رہے تھے تو خاموش ہو گیا.
آپ کو تھوڑا ویسا ہے،
हो गया भाई, जब से तो हो ही गया,
है ना।
और क्या करेंगे, इतना तो 50-50 आ गया ना।
नहीं, इसको तो जीरो है,
हाँ
ये तो जीरो है।
नहीं समझ आया बिल्कुल।
नहीं
ठीक,
अच्छा अच्छा
पहुंच गए इसमें भी उसामा साहिल को मैं कैसे लिखूंगा।
तो फिर तर्जुमा इनको कौन करेगा?
ये करो साहिल,
अभी वाले करेंगे। तो अभी जो इतनी देर से किया था वो तो कर दो
बाद
फिर।
में कर लेना, वो हो
अच्छा
जाएगा
वो बात
बाद में कर लेना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ा बहुत अल्लाह ताला खुद ही काम दे देंगे।
ये अर्ज कर रहा था वही कि दावत के साथ में अप्रिशिएटिंग नहीं है कोई, हमारे को वो नहीं करेगा, आपने बहुत ये किया, आपने बहुत वो किया, बल्कि उतरना होता है, तनाजुल चाहिए उसमें, क्योंकि मधु हमको पहचानता नहीं, ना हमें पहचानता, ना हमारे मर्तबे को पहचानता, ना इल्म की फजीलत को जानता, ना आलिम की फजीलत को जानता, वो कुछ नहीं जानता। उलमाए किराम के इसमें इंटरेस्ट नहीं लेने का एक सबब ये भी है, जो उलमा नहीं लगते ना, मदरसे गुजार के आ गया उसके बाद छोड़ दिया, उसकी वजह एक ये भी है, और भी वजूहत हैं, एक ये भी है उसमें। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए उसके लिए, पहले से वक्त इसीलिए लगवाया जाता है कि इसके लिए आदमी प्रिपेयर रहे, और इस किस्म की चीज़ें होती हैं इसमें। फिर यह है कि अल्लाह ताला ने इसको बहुत सादे अंदाज में रखा है, सिंपल अंदाज में है, 6 बातें हैं, 6 नंबर हैं। अब आता आदमी आलिम आदमी सोचता है, तालिबे में सोचता है कि ये क्या है, ये तो एक दिन में याद हो जाते हैं, इसके बाद क्या काम है। हालांकि याद तो ये एक दिन में होते हैं, लेकिन हासिल पूरी ज़िंदगी में होते हैं, हासिल होने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। एक मरतबा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को एक जमात भेजी, उसमें से जो बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा होशियार समझे जाते थे साहब, 4 महीने लगा के आए, पूछा कि भाई कुछ सीखा? कह लेंगे हाँ बहुत कुछ सीखा। कह लेंगे क्या सीखा? तो कह लेंगे 6 नंबर सीख लिए पूरे। नहीं यार वाकई कमाल है तेरा, तो हमसे तो अभी ज़िंदगी भर में पहला नंबर भी नहीं सीखा गया अभी तक। तो याद होने के लिए तो 6 नंबर बहुत आसान है, एक तालिबे में गए तो बहुत ही आसान है, बयान करने के लिए भी आसान है, थोड़ी सी मशक से बयान कर सकता है। लेकिन यह है कि लेकिन से क्या मुराद है, लेकिन से मुराद में यह है, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं आलिम हो गया और अल्लाह ने बहुत अच्छी सलाहियत मुझे दी, फिर उसके बाद जामिया के अंदर बहुत बड़े गालिबन बगदाद ही में किसी और जगह रहे, वहाँ के जो सबसे बड़ा मदरसा था, स्कूल जामिया यूनिवर्सिटी थी अरबी की, उसमें वो सदर मदरिस भी हो गए, हेड बड़े मदरिस हो गए, सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए समय, और लोगों ने उनकी सलाहियत को लोहा मान लिया, वो भी उस ज़माने में मुस्लिम गवर्नमेंट में इस्लामी हुकूमत में, काजी भी उन्हीं के होते थे, उलमा भी होते थे, मुफ्ती तो होते ही थे उलमा में से, जज भी उन्हीं के सब होते थे, हाकिम भी वही होते थे, वज़रा भी वही होते थे, मिनिस्टर्स भी वही होते थे। तो जब उनकी सलाहियत का लोहा मान लिया तो कहने लगे, अचानक मेरे दिल में एक बात आई, वो बात ये आई कि कुरान पाक में है, फ़ैन आमनू बिमिसली मा आमनतुम, सहाबा से ख़िताब करके फरमाया कि लोग अगर ईमान लाएं उसके मिसल जैसे तुम ईमान लाए हो, सहाबा के ईमान जैसा ईमान अगर तुम्हारा है तो हिदायत पर हैं लोग। अचानक एक आयत मेरे दिल में आई, फ़ैन आमनू बिमिसली मा आमनतुम, तो मैंने सोचा कि क्या मेरा ईमान सहाबा के ईमान के मिसल है, ये मैंने सोचा, वैसे तो नहीं है, साहबा की ईमानियात का उनके यकीन का तो मैार ही लगता है बिल्कुल, दुनिया तो उनके सामने बिल्कुल खसो खाशा कचरा थी, बिल्कुल गार्बेज थी, कोई अहमियत नहीं, कोई वक़ात नहीं, कोई वज़न नहीं इसका, जैसे हुजूर ने उनको बताया था वैसी थी, हुजूर ने फरमाया मच्छर के पर की हैसियत नहीं है इसकी, तो उनके जहन में यही, उनके दिल में यकीन में यही था कि मच्छर के पर की भी इसकी हैसियत नहीं, और फिर फरिश्तों का जो निज़ाम है, किताब का जो निज़ाम है, रसूलों का जो निज़ाम है, तकदीर का जो निज़ाम है, अल्लाह पर ईमान का, आखिरत का, जन्नत और जहन्नम का, हज़रत सहाबा के पास जैसे जिस अंदाज़ का ईमान था उस अंदाज़ का ईमान मेरे पास नहीं है, अगरचे कि मैं शेखुल हदीस भी हूँ, शेखुल तफसीर भी हूँ, शेखुल फिका भी हूँ, फ़कीह भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, सभी थे, इमाम है, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद ईमान मेरा वैसा नहीं था जैसे सहाबा का था। तो इस चीज़ ने मुझे बेचैन किया, मैं सब छोड़ छाड़ के निकल गया, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी उन्होंने। उस ज़माने में इस फील्ड पर काम कराने वाले जो है ना सूफिया होते थे, मशायखीन होते थे, तो फिर फलतफत तो इला तरीक़ सूफिया लिखा मैंने। फिर मैंने सूफिया के तरीक़ की तरफ तवज्जो की, फिर तो उनके ऊपर इतना गलबा हुआ इश्क का, अल्लाह ताला की मोहब्बत का, कि बीमार हो गए। हकीमों ने इनको देख के कहा कि ये आदमी मरीज इश्क है, अगर इसको इसका मतलब नहीं मिला तो मर जाएगा, ये कहा हकीमों ने। खैर फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर बड़ा फजल फरमाया, जंगलों में रहे एक अरसे तक, फिर को उनके शेख मिल गए, रहबरी की उनकी, तालीम की, तरबियत की, और फिर जो है ना उनको कुशुफ शुरू हो गए, दिल की दुनिया खुल गई उनके सामने, कशफ कल्ब हो गया, कशफ इलाही भी कहते हैं उसको। इसीलिए उन्होंने बड़ी उम्दा बहसें की हैं दिल की, बहुत ही अजीब गरीब बहसें हैं उनकी दिल से मुताल्लिक। तो गर्द यह है कि जहाँ तक ताल्लुक छह सिफात का है, वो पहली सिफत ही ऐसी है कि उसको बहुत काम चाहिए, बहुत मुजाहिदा चाहिए, बहुत यकसुई चाहिए, मालूमात काफ़ी नहीं है उसके लिए, जो हम अपने करते हैं ना मदरसों में मालूमात हासिल करते हैं, मालूमात से हटके है कुछ थोड़ी सी चीज़ें, तो इसलिए इसमें लगे रहना है अपने, हम लगे रहेंगे ईमान पर, मेहनत करते रहेंगे, तो फिर हफ्ता अला शान हो ईमान की हकीकत से नवाजेगा। ऐसे इबादत की मालूमात अलग हैं लेकिन इबादत की हकीकत अलग है, नमाज कब वाजिब होगी, औकात सलात क्या हैं, इब्तदा क्या है, इंतहा क्या है, शराइत क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, मुस्ताहबात क्या हैं, मकरूहात क्या हैं, अरकान क्या हैं, कब सजदे सहू है, कब नहीं है, फला 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 जितनी चीज़ें होती हैं वो सब वो अलग चीज़ें, लेकिन बंदे का हक तआला के साथ में एक ऐसा ताल्लुक होना कि जिसके अंदर आबिद और माबूद का रब्त हो जाए, इबादत का तहक्कुक हो जाए, जिसके लिए पैदा किया गया इंसान को, वो तो बहुत दूसरी चीज़ है। इसलिए हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरों में है कि, और हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में भी है कि ये मेहनत जो है असल दो चीज़ों की मेहनत है, ईमान की मेहनत है और नमाज की मेहनत है। ये ईमान की मेहनत है, ये जो छह चीज़ें हैं इसमें, इन छह में दो मेहनत की चीज़ें हैं स्पेशल, क्योंकि इल्म की मेहनत के लिए तो मैदान दूसरा है, ईमान की मेहनत है और नमाज की मेहनत है। पूरे वजूद से, जाहिर और बातिन दोनों से, जाहिरी वजूद और बातिनी वजूद, पूरे वजूद से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कामिल मुतवज्जे हो जाने का नाम नमाज है, उसकी मशक है कि आप जितनी देर नमाज में हो पूरे के पूरे वजूद से उधर ही मुतवज्जे हो जाए। आप पूरे नमाज पे गौर करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसीलिए तहरीमुह तकबीर व तहलीलुह तस्लीम, एहराम बांधता है आदमी तकबीर के ज़रिए से और एहराम खोलता है अस्सलाम वालेकुम के ज़रिए से। उसमें होता यह है कि चूंकि पूरे वजूद की तवज्जो की मशक है अल्लाह ताला की तरफ, तो उसमें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। रोज़े की हालत में आप खा नहीं सकते लेकिन खाने के लिए पका सकते, औरतें पूरा दिन तमाम रोजे की हालत में चूल्हे के पास पकाती रहती हैं, खा नहीं सकती, लेकिन पका नमाज में ना खा सकते ना पका सकते, हज में आप बगैर सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, लेकिन हज खत्म होने के बाद पहनने के लिए सीधे बैठ सकते हैं आप, हज में बगैर सिला हुआ कपड़ा पहना है ना, लेकिन सी सकते हैं आप एहराम की हालत में, ताकि जब एहराम खत्म हो फिर मैं ईद के कपड़े पहनूं बल्कि सी सकते हैं आप, नमाज के अंदर नहीं कर सकते, सीते भी नहीं बैठ सकते आप, जो चीज़ मना है वो कुछ किसी दर्जे में भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वजूद से तवज्जो सीखने का है, जुबान भी उसी में, हाथ पैर भी उसी में, दिमाग भी उसी में, दिल भी उसी में, इसीलिए शुरू दिल से है नमाज, नियत का ताल्लुक दिल से होता है, फिर जुबान पे आते हैं, फिर उसके बाद जवारह पर आ जाती है बात। तो रूहानियत से और जिस्मानियत से, जाहिर से, बातिन से, पूरे के पूरे वजूद से हक तआला शानुहु की अजमत के अंदर डूब जाना और अपने को मुस्तहलक कर देना, हलाक कर देना, उसमें मेल्ट कर देना अपने आप को, तो वो एक बड़ी मशक है। वो तो सिफात, छह सिफात जो हैं ये बोलने को बहुत आसान है, मौलवी के लिए तो एक दिन का काम है, दो दिन का काम है, लेकिन सीखने के लिए ज़िंदगी भर चाहिए। और इसी से इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक मुस्तकिल फील्ड है, ये अलग फील्ड है। ये पहले मदारिस के अंदर जो पढ़ाने वाले लोग थे वो दोनों के जामे होते थे, तो इसलिए वो जमा हो जा सकती थी चीज़। इस ज़माने में वो चीज़ बहुत कम हो गई, अल्लाह माशाल्लाह कोई बंदा अपने को मिल जाए, अलग बात है, ऐसा भी हो सकता है कभी, लेकिन वो अलग दुनिया है पूरी, उसकी तवज्जो की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लगे रहना चाहिए काम में। बस अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको कबूल फरमाए, और बहुत आपने अच्छा किया, क्या किया, ये वक्त लगाए, माशाल्लाह।